ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातं अहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावेदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, once again, welcome everyone on this Tuesday evening class. And as I said, we will be today discussing the special topic for upcoming Gaur Purnima festival tomorrow. So, everybody know about who is Chaitanya Mahaprabhu. Gaur Purnima is appearance day of Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu appeared 500 years back in Navdvip Mayapur. And sometimes people think Chaitanya Mahaprabhu to be ordinary saintly person. So, logon ko lagta hai Chaitanya Mahaprabhu ek साधु हैं, एक महान संत हैं, जो भारतवर्ष में जिनका प्राकट्य हुआ भगवत नाम स्मरण करने के लिए, भगवत नाम प्रचार करने के लिए। पर चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक महान संत ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतार है। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण सम्मिलित अवतार है। इन भगवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में कहा जाता है, कृष्ण वर्णम सुषे कृष्णम संगपांगस्त्र प्रसादम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजान्ति ही सुमेधशः। कलयुग में जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो भगवान का कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग के साथ पूजा अर्चना करेंगे, जो भगवान का अवतार है, जो भगवान के नामों का कीर्तन गाएंगे, और उनका जो रंग होगा वो कृष्ण कलर का ना होके गौर वर्ण का होगा। कृष्ण वर्णम तुषे ही कृष्णम संग पांग अस्त्र प्रसादम, वो अपने अनुयायियों के साथ, अपने भक्तगणों के साथ भगवान के नाम, भगवान का कीर्तन गाएंगे, और कलयुग में लोग भगवान के इस अवतार की पूजा करेंगे। भगवान का अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने अवतार क्यों लिया, उसके कारण क्या थे भगवान का अवतार लेने के, तो उसमें बताते हैं कि द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने धाम वापस जाने से पहले उनके हृदय में विचार आया कि मैं युग युग में आता हूँ अपने डिफरेंट अपने अलग अलग अवतार में, मैं लोगों को अलग अलग तरह का ज्ञान प्रदान करता हूँ, पर बहुत समय से मैंने जो विशुद्ध भक्ति का ज्ञान है वो विशुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान नहीं किया है। चिरकाले नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेरा नहीं अवस्थान। बहुत समय से मैंने अपना जो विशुद्ध भक्ति है वो संसार के लोगों के ऊपर उसका प्रचार नहीं किया है, और ये मेरी विशुद्ध भक्ति के बिना जो इस संसारी जगत में लोगों का जो रहना है वो एक व्यर्थ है। युग धर्म प्रवत माऊ नाम संकीर्तना, चारी भावा भक्ति दिया न चाऊ भुवना। तो अभी कलयुग में आके मैं युग धर्म का प्रचार करूंगा, जो युग धर्म है नाम संकीर्तन, जो कॉन्ग्रिगेशनल चैंटिंग है भगवान के नाम का, मैं उसका प्रचार करूंगा और लोगों को भगवान के नाम के ऊपर नचाऊंगा, भगवान के नाम के ऊपर नचा के लोगों को अपनी विशुद्ध भक्ति प्रदान करूंगा। तो ये भगवान के अवतार का बाहरी कारण है कि भगवान कहते हैं मैं लोगों को भक्ति प्रदान करने के लिए आऊंगा, और भक्ति प्रदान करने के लिए मैं खुद एक भक्त का वेश बना के आऊंगा, क्योंकि जब तक अपने आचरण से दिखाया ना जाए, अपने आचरण से लोगों को सिखाया ना जाए, तो लोग उस चीज को ग्रहण नहीं करते। तो मैं खुद अपने आचरण से खुद एक भक्त का आचरण करके भक्ति का प्रचार करूंगा और सबको भक्ति के बारे में सिखाऊंगा।
हरे कृष्ण।
अपनी कर्म भक्ति भाव अंगीकारे, अपनी आचारी भक्ति सिखाऊ सभाए। अपने नाम काले धर्म सिखाना ना जाया, एही ता सिद्धांत गीता भागवत गाया। तो मैं खुद अपना भक्त का रूप धारण करके खुद अपने भक्त के रूप में आऊंगा और लोगों को भक्ति का प्रचार करूंगा। सब शास्त्र जो हैं, गीता भागवत सब शास्त्र यही प्रचार करते हैं कि जब तक अपने आचरण से दूसरों को सिखाया ना जाए तब तक लोगों को उस चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। एता भावी काली काले प्रथम संध्याया, अभी तारे हैला कृष्णा आपारी न दे आया। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त गणों के संग में इस धरती पर अवतीर्ण होते हैं कलयुग के प्रथम संध्या में। एता भावी काली काले प्रथम संध्याया, तो कलयुग की जो प्रथम संध्या है, जो कलयुग के पहले 10,000 वर्ष हैं, उस टाइम में उस समय में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। अवतार हैले कृष्ण अपानी नदी आया, कहाँ पर अवतार लेते हैं भगवान? नदिया में, जो बंगाल में मायापुर का रीजन है, नदिया गांव है, भगवान वहां पर अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान के सब अवतारों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जब तक भगवान के अवतार, भगवान की लीला का शास्त्र में वर्णन ना हो तो तब तक हम समझ नहीं सकते कि वो खुद भगवान है। क्योंकि तो अगर कोई भी साधु कोई भी बोले कि मैं भगवान का अवतार हूं तो उसको कैसे माना जाए? क्योंकि उसका अगर जब तक उसको शास्त्र में स्वीकार नहीं किया गया, जब तक उसका शास्त्रों में व्याख्यान नहीं किया गया कि ये भगवान का अवतार है, तब तक उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और भगवान को, किसी को भी भगवान स्वीकार करने का दूसरा लक्षण है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो उनके शरीर के ऊपर भगवान के कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कि उनके पैरों में छत्र का चिन्ह, शंख का चिन्ह, मंदिर का ध्वजा का चिन्ह। तो भगवान के शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं जो साक्षी होते हैं कि ये भगवान का अवतार है। और तीसरा लक्षण किसी को भगवान स्वीकार करने के लिए कि ये भगवान का अवतार है, उनकी लीला। तो भगवान की जो लीला होती है वो अमानवीय लीला, जिससे सिद्ध होता है कि ये साक्षात भगवान है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, जो कलयुग में अवतार ग्रहण करते हैं युग धर्म सिखाने के लिए। और ये युग धर्म क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन, संयुक्त युक्त कीर्तन, सब लोगों के साथ मिलके कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, तो उसका प्रचार करने के लिए भगवान अपना अवतार ग्रहण करते हैं। तो यह है भगवान के अवतार का बाहरी कारण, बाह्य कारण। पर भगवान का अवतार ग्रहण करने का चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके क्यों आए कलयुग में, उसके और भी आंतरिक कारण हैं। और वो कॉन्फिडेंशियल रीजन क्या हैं? तो भगवान सोच रहे हैं कि जितने भी ये ब्रजवासी हैं, जो ब्रज लीला में जो मेरे पार्षद हैं, उन्होंने उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि मैं उनके प्रेम का ऋण चुका नहीं सकता। तो उनके प्रेम का ऋण चुकाने के लिए जब तक मैं ऐसे रूप में ना आऊं जहां पर आके मैं उनके रूप का व्याख्यान कर सकूं, उनके रूप, उनके प्रेम की महिमा को गुणगान कर सकूं, तब तक मैं उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि जितने भी मेरे सखा हैं, जितने भी मेरे पार्षद हैं, उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है, अगर मैं उनको भी वही मुक्ति दूं जो मैंने बाकी सबको दी है, जो बाकी इतने अन्य अन्य राक्षस आए इस लीला में, उन भगवान ने राक्षसों को मार के उनका उद्धार किया, उनको भी अपने धाम में वापस पहुंचा दिया, पर अगर मैं अपने बाकी जो मेरे पार्षद हैं, गोपगण हैं, गोपियां हैं, मेरे माता पिता हैं जो मेरे इस लीला में भाग लेने के लिए आए हैं, अगर उनको भी वही, तो ये उनके प्रति सही भाव नहीं होगा, उनके ऋण का, उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। तो उनका ऋण चुकाने के लिए मुझे ऐसा रूप ग्रहण करना पड़ेगा जिसमें आके मैं उनके प्रेम का व्याख्यान कर सकूं। तो ये एक आंतरिक कारण। दूसरा कॉन्फिडेंशियल रीजन क्या है? भगवान सोच रहे हैं कि जब भी मैं राधा रानी के साथ होता हूँ, जब भी मैं गोपियों के साथ होता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरा उनके प्रति क्या भाव है। मुझे उनके साथ रह के जो सुख मिलता है उसकी मैं अनुभूति कर सकता हूँ। पर राधा रानी को मेरे प्रति क्या आकर्षण हो रहा है, राधा रानी को क्या सुख मिल रहा है मेरे सानिध्य में आके, उसको महसूस करने के लिए, उसको जानने के लिए ये सब तभी संभव है जब मैं राधा रानी का भाव लेके आऊं और कृष्ण विरह में मैं इधर उधर भटकूं, कृष्ण कृष्ण नाम पुकारता हुआ, तभी मैं उसको समझ सकता हूं उनके प्रेम को। तो राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए, राधा रानी के भाव को समझने के लिए कि उनके हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है, उसको जानने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। एक और आंतरिक कारण भगवान का चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का, अपनी खुद की रूप माधुर्या, उसका जो मैजिक है, उसका जो जादू है, उसको समझने के लिए भगवान सोचते हैं कि मैं खुद अपने भक्त के रूप में आऊंगा, कि मेरे रूप में ऐसा क्या रस है, ऐसा क्या रूप माधुर्य है जिससे कि बड़े बड़े भक्त दीवाना होके सब कुछ छोड़ के ब्रज में आके मेरे नाम कीर्तन करते हैं, उनको ऐसा क्या सुख मिल रहा है, क्या रस मिल रहा है, उस रस की अनुभूति करने के लिए भगवान खुद अपने भक्त के रूप में आके उसको महसूस करना चाहते हैं। तो ये भगवान के अपीयरेंस के आंतरिक कारण है, कॉन्फिडेंशियल रीजन। तो चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण साधु, कोई साधारण संत, कोई भक्त साधारण भक्त नहीं है, वो भगवान का ही अवतार है। और भगवान का भी कैसा अवतार? राधा कृष्ण संयुक्त, राधा और कृष्णा का मिश्रण। तो बाहर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने कृष्णा, जो ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन है, उसको धारण नहीं किया, उन्होंने राधा रानी का कलर, जो गौर वर्ण है, जो पीत कलर है, जो मोल्टन गोल्ड का रंग है, उसको धारण किया, अंदर से हृदय में राधा रानी का भाव लिया और खुद साक्षात कृष्ण है। तो राधा रानी और कृष्णा का जो मिश्रण है वो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु जब, और जैसे ही भगवान का अलग अलग युगों में अवतार होता है तो भगवान अलग अलग रंग ग्रहण करते हैं, अलग अलग रंग स्वीकार करते हैं। जैसे सत्ययुग में भगवान का अवतार हुआ हंस अवतार, जो श्वेत कलर का, त्रेता युग में भगवान का अवतार हुआ रेड कलर का, रक्त कलर का, और भगवान द्वापर युग में अवतार ग्रहण करते हैं कृष्ण, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, कृष्ण वर्ण, और कलयुग में भगवान आते हैं गोल्डन कलर, पीतांबरीत कलर, जो मोल्टन गोल्ड का कलर है उसको धारण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में 500 साल पहले अवतीर्ण हुए तो उन्होंने अपने माता पिता को जो स्वीकार किया, जब भगवान आते हैं तो अपने एक भक्त को अपने माता पिता का स्थान देते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके माता पिता हुए जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता। और चैतन्य महाप्रभु का जब बचपन का जो नाम हुआ वो हुआ निमाय पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु नीम के वृक्ष के नीचे पैदा हुए पूर्णिमा के दिन, और उस समय ग्रहण का समय था और भगवान का अवतीर्ण करने के लिए उनके भक्त अद्वैत आचार्य ने भगवान के नामों का खूब उच्चारण किया। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ रहा है, लोग कलयुग धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए भगवान को खुद अवतार ग्रहण करना चाहिए, और भगवान को धरती पर बुलाने के लिए, अवतार ग्रहण करने के लिए अद्वैत आचार्य जी ने भगवान के शालिग्राम शिला का पूजन किया, उनके नाम का उच्चारण किया कि भगवान आप कृपा करके इस धरती पर अवतार ग्रहण कीजिए। तो अपने भक्त की पुकार को सुनकर भगवान ने अवतार ग्रहण किया, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए जगदीश मिश्रा और सच्ची माता के घर पे निमाई के रूप में। और जब अवतार ग्रहण किया तो उस समय ग्रहण का समय था, और ग्रहण के समय में क्या होता है कि लोग सब होली रिवर्स में जाके, पवित्र नदियों में जाके स्नान करते हैं और भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो ग्रहण के समय में सब लोग जाके नदी में स्नान कर रहे थे और जोर जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो भगवान ने अपने अवतार लेने के समय पे ही अपने जो उनका मिशन था उस मिशन को व्यक्त किया कि मेरे पर्पस, मेरा इस अवतार को ग्रहण करने का पर्पस क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसको दो भाग में विभाजित किया जाता है, आधी लीला और शेष लीला। चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष के लिए, 48 इयर्स के लिए इस पृथ्वी पर रहे, और इन 48 इयर्स में उन्होंने जो भी लीला की उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, आधी लीला और शेष लीला। आधी लीला है जो भगवान का बर्थ से लेके सन्यास लेने तक की लीला है उसको आधी लीला कहते हैं, और सन्यास लेने के बाद की जो लीला है उसको शेष लीला कहा जाता है। और आधी लीला में भी चार भाग हैं, बाल लीला जो भगवान की जन्म से लेके 5 वर्ष की आयु तक की लीला है, उसके बाद पौगंड लीला 5 वर्ष से लेके जब भगवान ने मतलब 5 वर्ष की आयु में अपना शिक्षा दीक्षा शुरू किया उस आयु से लेके 10 वर्ष की आयु तक पौगंड लीला, और 10 वर्ष की आयु से लेके 18 वर्ष की आयु तक किशोर लीला, और 18 वर्ष से लेके 24 साल तक की आयु भगवान का संन्यास ग्रहण करने तक की आयु वो है युवा लीला। तो भगवान की जो आधी लीला है संन्यास तक की लीला वो चार भागों में है, और संन्यास लेने के बाद 24 वर्ष से लेके भगवान के अंतर्ध्यान होने तक, भगवान के अपने धाम वापस जाने तक की जो लीला है वो है शेष लीला। और शेष लीला को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, मध्य लीला और अंत्य लीला। मध्य लीला है संन्यास लेने के बाद प्रथम 6 वर्ष जब चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत वर्ष में भ्रमण किया, उस पहले 6 वर्ष को मध्य लीला में कहा जाता है, और 6 वर्ष के बाद जो लास्ट 18 वर्ष हैं जब चैतन्य महाप्रभु प्राइमरली जगन्नाथपुरी में जब उन्होंने निवास किया, जगन्नाथपुरी में भगवान ने अलग अलग लीला किया, वो अंत्य लीला में आता है। और भगवान की जो लीला उसको दो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, एक है चैतन्य भागवत जो कि वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है, उस चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने भगवान की आधी लीला का विस्तार में वर्णन किया है। और दूसरा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है, और उसमें उन्होंने भगवान की शेष लीला का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने भगवान का आदि लीला का भी वर्णन किया है, पर बहुत ही संक्षिप्त वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने लिखा उसमें कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने भगवान की आदि लीला को बहुत विस्तार से ऑलरेडी वर्णन कर दिया है, इसलिए मैं अपनी चैतन्य चरितामृत में उसको संक्षिप्त में लिख रहा हूं। तो ये दो ग्रंथ में भगवान की लीला सुनने को पढ़ने को मिलती है, जो कि बहुत ही भगवान की लीलाओं को सुनने से, गाने से, बोलने से, सुनाने से जो मन में शुद्धता आती है, भगवान के प्रति जो भक्ति बढ़ती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कल भगवान का प्राकट्य दिवस है, भगवान का अपीयरेंस डे, तो उसके उपलक्ष्य पर हम भगवान की कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसी लीलाओं का वर्णन करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति आस्था बढ़े, भगवान का जो अवतार लेने का कारण था उसको, उसके प्रति हम समर्पण भाव पैदा कर सकें, भगवान के उस मिशन के प्रति हम समर्पण दिखा सकें, और तो भगवान की इंस्पिरेशन से, जैसे भी आप कहें कि जो भी इंस्पिरेशन हुआ, तो आज मैं भगवान का सन्यास ग्रहण करने की लीला, उसका करने की कोशिश करूंगा। तो भगवान का 24 वर्ष की आयु में, जैसे मैंने बताया कि भगवान ने सन्यास ग्रहण किया, तो भगवान का सन्यास ग्रहण करने से पहले ही भगवान ने अपना लीला को शुरू कर दिया था, कि उसको अरेंज करना कि कैसे मैं अपना सन्यास ग्रहण करूंगा। तो एक दिन सची माता, जो चैतन्य महाप्रभु की माता है, सची माता, और चैतन्य महाप्रभु की ऑलरेडी उस समय विवाह हो चुका था, चैतन्य महाप्रभु की शादी हो चुकी थी, और उनकी पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया। तो सची माता और विष्णुप्रिया एक दिन गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे सुबह। तो गंगा जी पर जाते हुए उनको नदिया में, जो उनका गांव था, वहां पर लोगों से, अलग अलग लोगों से कुछ ऐसे खुसर फुसर जैसे बोलते, कुछ सुनने को मिल रहा था कि जो निमाई है, जो चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था, निमाई, गौरांगा, गौर, तो जो निमाई है वो बहुत जल्दी संन्यास लेने वाला है। और सची माता और विष्णु प्रिया को जब ये सब बातें सुनने में मिल रही थी, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, उनके हृदय में एक तरह से भय उत्पन्न हो रहा था कि ये हम क्या सुन रहे हैं, कि हमारा निमाई, मेरा बेटा निमाई, विष्णु प्रिया को लग रहा था मेरे पति, मेरे नाथ निमाई, वो संन्यास लेके चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो स्नान लेने के बाद वो लोग अपने घर पे वापस आए। उस शाम को जब चैतन्य महाप्रभु घर लौटे कीर्तन करने के बाद, तो चैतन्य महाप्रभु का रोज का नियम था, श्रीवास आंगन में जाते थे, श्रीवास पंडित के घर पे कीर्तन होता था, सब भक्त लोग वहां पर इकट्ठे होते थे, और चैतन्य महाप्रभु खूब एक्सटेसी में कीर्तन करते थे, सब भक्तों के साथ नृत्य करते थे, भगवान के नाम का उच्चारण करते थे। तो उस शाम को जब चैतन्य महाप्रभु घर पे वापस आए, तो सची माता ने निमाई को अपने पास बुला के बोला, निमाई ये मैं क्या सुन रही हूँ, नदिया में लोग, सब लोग बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो निमाई पंडित, उन्होंने सची माता को बोला, तो आप क्या सुन रहे हो, आप बताओ मुझे आप क्या सुन रहे हो। सची माता ने बोला, ये भी अब तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि हम लोगों को क्या सुनने में आ रहा है पूरे नदिया में। तो सची माता ने बोला कि हम सुन रहे हैं कि तुम संन्यास लेके घर को छोड़ के जाने वाले हो, तो संन्यास ग्रहण मत करो, तुम संन्यास क्यों लेना चाहते हो, तुम अपना कीर्तन करना चाहते हो, कीर्तन करो, भक्तों के साथ रहना चाहते हो, भक्तों के साथ रहो, तुम संन्यास लेके क्यों जाना चाहते हो, अगर तुम संन्यास लेके चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, तुम्हारा बड़ा भाई विश्व रूप ऑलरेडी संन्यास ग्रहण करके चला गया था, अब तो तुम्हारा मुख देख देख कर मुझे थोड़ा साहस मिल रहा था, अगर अब तुम भी चले जाओगे तो मैं इस बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, मेरा कौन सहारा होगा। तो तो जब सती माता ने निमाई पंडित के साथ, गौरांगा महाप्रभु के साथ ऐसे वार्तालाप शुरू किया, ऐसे रोना धोना शुरू किया, तो गौरांगा ने सती माता का हाथ अपने हाथ में लेके सती माता को बोला, माता मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तो निमाई ने सती माता के कथा सुनाना शुरू किया, महाभारत का कथा, कि आपने सुना होगा महाभारत की कथा में, जब पांडव को लाक्षाग्रह में जलाने का कोशिश किया गया, सब पांडव विदुर जी की कृपा से गुप्त सुरंग बना के लाक्षाग्रह से बाहर निकल गए, कुंती माता के साथ जंगलों में भटक रहे थे, जंगलों में निवास कर रहे थे। तो ऐसे ही जंगलों में भटकते भटकते वो बंगाल में एक चक्र नगरी में आए, और एक चक्र नगरी में एक ब्राह्मण परिवार ने उनको आश्रय दिया, एक ब्राह्मण परिवार ने उनकी बहुत सहायता की। उस एक चक्र नगरी पे एक बहुत बड़ा संकट था, वहां पर एक राक्षस वकासुर उस नगरी के सब लोगों को बहुत परेशान करता था, वो नगर में कभी भी घुस आता था और किसी को भी पकड़ के खा जाता था। तो एक चक्र धाम के लोगों ने वकासुर के पास जाकर प्रार्थना की कि तुम हमारी नगरी में आके ऐसा सब विध्वंस क्यों कर रहे हो। तो बकासुर ने बोला, मुझे जब भूख लगती है तो मुझे खाने के लिए आहार चाहिए। तो एक चक्र धाम के लोगों ने आपस में निर्णय किया कि हम हर महीने बकासुर के पास प्रचुर मात्रा में भोजन सामग्री भेजेंगे और साथ में एक व्यक्ति को भेजेंगे उसके भोजन के लिए, और हर महीने एक अलग परिवार का नंबर आएगा, एक अलग परिवार का बारी आएगा जो बकासुर के लिए भोजन लेके जाएगा और अपने परिवार का एक सदस्य देगा। तो जब कुंती बुआ अपने पुत्रों के साथ उस ब्राह्मण परिवार में रह रहे थे, तो उस ब्राह्मण परिवार का नंबर आया जब उन्होंने बकासुर के लिए भोजन लेके जाना था। तो उस परिवार के सब सदस्य आपस में कलेश कर रहे थे, आपस में रोध हो रहे थे। जो परिवार का मुखिया था, जो ब्राह्मण था, वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि इस बार मेरा नंबर है उस बकासुर के लिए भोजन लेके जाने का, तो मैं भोजन लेके जाऊंगा और तुम मेरे पीछे तुम बच्चों का ध्यान रखना। और उसकी पत्नी रुदन कर रही थी, वो अपने पति से बोल रही थी कि नहीं आप नहीं जाइए, आप मैं लेके जाऊंगी। तभी उनकी पुत्रियां, उनके घर में बहुत सारी पुत्रियां थी, उनकी पुत्रियां वहां पर आई, उन्होंने बोला कि हम भी इस परिवार का हिस्सा हैं, हम भी इस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। बेटियां वैसे भी माता पिता के ऊपर बोझ होती है, उनको एक दिन शादी करके जाना होता है, आप हमें ये अवसर दें कि हम इस परिवार की कुछ सेवा कर सकें। अगर हम में से एक कम भी हो गया तो इस परिवार में कुछ आंच नहीं आएगा, पर अगर माता पिता चले गए तो बाकी बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। और उस परिवार में एक सबसे छोटा बालक था, तो वो बालक भी आया, वो बालक बोलने लगा मैं जाऊंगा, आप मुझे जाने दीजिए, आप मुझे ये सेवा का अवसर दीजिए। तो परिवार के सब सदस्य जब आपस में ऐसे बात कर रहे थे, तो उसी समय कुंती बुआ ने कक्ष के अंदर प्रवेश किया। कुंती बुआ ने सब बात सुन ली, तो उन्होंने कक्ष के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने बोला कि आप लोगों ने हमारे परिवार के ऊपर हमारी इतनी सहायता की है हमारे कष्ट के समय में, और हम भी आपके परिवार का हिस्सा हैं, मेरे 5 पुत्र हैं, तो मैं अपने एक पुत्र को इस कार्य के लिए भेजूंगी, अगर मेरे 5 पुत्रों में से कम भी हो जाएगा तो मेरी कोई हानि नहीं होगी, पर अगर आपके परिवार का, अगर परिवार का मुखिया ना रहे तो परिवार का पालन पोषण बहुत कठिन हो जाएगा। तो कुंती माता ने बकासुर के भोजन के लिए अपना बेटा भेजने का प्रस्ताव दिया। तो निमाई सच्ची माता को ये कथा सुना रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए, कि जैसे कुंती माता ने पूरे एक चक्र धाम की रक्षा के लिए अपना एक पुत्र न्यौछावर करने की ठान ली, वैसे ही इस जगत का कल्याण करने के लिए आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। अगर आपका एक पुत्र जाने से पूरे संसार में प्रकाश फैलता है, पूरे संसार में कल्याण होता है, इस हमारे धर्म का जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उसका प्रचार होता है, उसकी रक्षा होती है, तो उसकी रक्षा करने के लिए आप अपना पुत्र दान कर दीजिए। तो ये मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे जाने दीजिए, आपकी आज्ञा के बिना मैं नहीं जा सकता। अगर आपकी आज्ञा के बिना चला गया, अगर माता की आज्ञा लिए बिना चला गया, तो मेरा जो कार्य है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर आप मुझे जाने की आज्ञा नहीं दोगे तो मैं प्रण करता हूं कि मैं कृष्ण विरह में यहीं पर रो रो के अपने प्राण त्याग दूंगा। और सच्ची माता बोले, सच्ची माता ने कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे दूं? अगर तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूं तो उसका मतलब होगा कि मेरा दूसरों से कहना कि मेरा हृदय चीर कर मेरे हृदय के अंदर से मेरे प्राण निकाल लो, तो मैं तुम्हें जाने की आज्ञा कैसे दे दूं? तो निमाई पंडित ने बोला, त्रेता युग में जब भगवान राम ने कौशल्या माता से वनवास जाने की आज्ञा मांगी तो कौशल्या माता ने उनको वनवास में जाने की आज्ञा दे दी। अगर कोई मनुष्य जन्म लेके भगवान के नाम का कीर्तन ना करे, अगर मनुष्य जन्म लेके भगवान के नाम का प्रसार ना करे, प्रचार ना करे, तो उसका जन्म तो ऐसा हुआ जैसे माता को प्रसव देने की पीड़ा देने के लिए जन्म हुआ है। तो यही भाव एक्चुअली रामायण में सुमित्रा माता भी बताते हैं। जब लक्ष्मण भगवान राम को बोलते हैं मैं भी आपके साथ वनवास के लिए चलूंगा, तो राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि आप अपनी माता से आज्ञा ले जाओ। तो लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास जाते हैं और सुमित्रा माता को कहते हैं कि मैं राम जी के साथ वन को जाना चाहता हूँ। तो सुमित्रा ने उन्हें कहा कि तुम मेरी आज्ञा लेने क्यों आए? तो लक्ष्मण जी ने बोला, राम जी ने बोला है मुझे कि माता की आज्ञा लेके आओ। तो सुमित्रा जी ने कहा, हाँ राम ने कहा था अपनी माता की आज्ञा लेके आओ, तो तुम्हें अपनी जानकी माता के पास जाना चाहिए था, उसकी आज्ञा लेनी चाहिए। तुम्हारे लिए राम ही पिता है, तुम्हारे लिए जानकी ही माता है, तो तुम्हें जानकी जी की आज्ञा लेनी चाहिए थी। तुम मेरी आज्ञा लेने क्यों आए हो? मेरा सौभाग्य है कि मेरा बेटा भगवान राम की सेवा करने के लिए वन में जा रहा है। जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त ना बने, जिसका पुत्र भगवान कृष्ण का भक्त ना बने, उससे तो अच्छा है कि वो पुत्र पैदा करने के बजाय एक पत्थर को पाल ले। तो सुमित्रा माता ने भी वही भाव व्यक्त किया उस समय। तो यहाँ पर निमाय पंडित कह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य जन्म पाकर भगवान का नाम कीर्तन ना करे, भगवान के नाम कीर्तन का प्रचार ना करे, तो वो तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुआ है। तो जैसे कौशल्या माता ने भगवान राम को वन जाने की आज्ञा दी, आप भी मुझे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए लोक कल्याण के लिए। द्वापर युग में जब अक्रूर जी कृष्ण को लेने आए, कृष्ण की आयु सिर्फ मात्र 11 वर्ष की थी, उस 11 वर्ष की आयु में जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेने आए अपने साथ मथुरा जाने के लिए, तो उस समय यशोदा माता और नंद बाबा ने रो रो कर अक्रूर जी से कहा कि हमारे कृष्ण से ऐसा क्या अपराध हुआ है जो कंस उनको मथुरा में बुलाकर मारना चाहते हैं। आप कृष्ण को ले जाने के बजाय आप हमें लेकर चलिए, हमें जो भी अगर हमारे गोपाल ने कोई अपराध किया है तो हमें आप लेकर चलिए। कंस से बोलिए कि हमें आजीवन कारागार में डाल के सजा दे पर हमारे गोपाल को कुछ ना कहे। तो यशोदा मैया और नंद बाबा कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देना चाहते थे, पर भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को समझाया कि कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि उसके अत्याचार से सब साधु संतों को कष्ट हो रहा है, सब ब्राह्मणों को कष्ट हो रहा है, गाय की हत्या हो रही है, वैष्णव जन को कष्ट हो रहा है, कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि उसके कष्ट उसके अत्याचार का उसको दंड अब देना ही पड़ेगा, आप मुझे मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए। तो यशोदा माता ने और नंद बाबा ने रोते रोते नंद कन्हैया को मथुरा जाने की आज्ञा दी। तो भगवान ने अपना प्रियजनों को, ब्रजवासी को, सबको छोड़कर मथुरा जाने का निर्णय लिया संसार के कल्याण के लिए। अपने सब प्रियतमों को छोड़कर, अपने सब सखा को छोड़कर, अपनी सब गोपियों को छोड़कर भगवान एकदम मथुरा के लिए पड़े, सबका त्याग करके। किस पर्पज से? किस लिए? ताकि जगत का कल्याण हो सके, ताकि कंस के अत्याचारों से सबको मुक्त किया जा सके। तो अभी इस कलयुग में इतना अत्याचार बढ़ गया है, लोग इतने पतित हो गए हैं, ये सनातन धर्म लुप्त होता जा रहा है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, लोगों को भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा लिए बिना मैं नहीं जा सकता। तो सच्ची माता ने कहा, अगर मेरी आंख फोड़कर संसार को रोशनी मिलती है तो तू चला जा, अगर मेरा घर लुटाकर दूसरों का घर भसता है तो तू चला जा, अगर मुझे अभागा बनाकर दूसरों का भाग्य खुलता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अगर मेरे प्राण लेकर संसार को प्राण मिलता है, संसार का कल्याण होता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। तो जब सच्ची माता ने ऐसे रोते रोते निमाई को अपने गले से लगा लिया, तो निमाई पंडित ने सच्ची माता को किसी तरह से सांत्वना देते हुए उन्हें सुलाया, और सच्ची माता को सुलाने के बाद निमाई पंडित अपनी पत्नी विष्णुप्रिया के कक्ष में आए, और फिर उनकी विष्णुप्रिया के साथ जो बात हुई, जैसे ही निमाई विष्णुप्रिया के अपने कक्ष में आए, भगवान बिस्तर पे लेट गए, और बिस्तर पर लेटकर ऐसे छटपटा रहे थे कृष्ण विरह में, हा कृष्णा हा कृष्णा, ऐसे करते करते भगवान अपने बिस्तर पर छटपटा रहे थे, जैसे मछली जल बिन मछली छटपटा रही हो। और जैसे ही विष्णुप्रिया ने कक्ष में प्रवेश किया, विष्णुप्रिया अपने हाथों में भगवान पहनाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु गौरंगा को पहनाने के लिए पुष्प माला लेके आई, उनके लिए उनको प्रसाद खिलाने के लिए भोजन लेके आई, तो विष्णुप्रिया ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि उनके पति निमाई जो बिस्तर पर ऐसे छटपटा रहे हैं कृष्ण विरह में, हा कृष्णा करते हुए, तो विष्णुप्रिया उनके पास आई, उनका हाथ अपने हाथ में लेके, हे नाथ ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, पूरे नदिया में ये बातचीत हो रही है कि निमाई संन्यास लेना चाहता है, मेरे पति संन्यास लेना चाहते हैं, पूरे नदिया में वो कहते थे कि विष्णुप्रिया बहुत ही सौभाग्यवती है, विष्णुप्रिया बड़ी बड़ भागी है, पर आप तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अभागी बना के चले जाना चाहते हैं, मैं आपकी दासी हूं, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए, आप मुझे अपनी दासी बनाकर अपने साथ लेकर चलिए, जब आप कृष्ण प्रेम में कृष्ण नाम लेते लेते रस्ते में मूर्छित होकर गिर जाएंगे तो आपको कौन संभालेगा, जब पथरीले रस्तों पे चलते हुए आपके पैरों में कांटे लग जाएंगे तो आपके पैरों से कांटे निकाल कर आपके पैरों को कौन संभालेगा, जब आपको भूख लगेगी तो आपको खाना कौन परोसेगा, चलिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं आपसे कुछ वस्तु नहीं मांगूंगी, अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करूंगी कि मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे गहना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, कृपया आप मुझे अपनी दासी बनाकर अपने साथ ले चलिए। तो विष्णुप्रिया ने भगवान को उदाहरण दिए कि जैसे सीता माता राम जी के साथ वन में गई, जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में गए तो सीता माता उनके साथ गई, जब पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास में गए तो द्रौपदी उनके साथ गई, उसी प्रकार अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं तो मुझे भी दासी बनाकर अपने साथ ले चलिए। तो गौरंगा महाप्रभु ने कहा कि भगवान राम जब वन में गए थे तो वो वनवास के लिए गए थे, उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया था, जब पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास में गए थे तो वो भी वनवास के लिए गए थे, उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया था, मैं संन्यास ग्रहण करके जा रहा हूं, और संन्यास ग्रहण करने का पहला नियम है स्त्री का त्याग करना, अपनी पत्नी का त्याग करना, तो मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता। जब महाप्रभु ने ऐसा कहा तो विष्णुप्रिया ने बोला, लगता है मैं ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत हूँ, मैं ही अपने पिता घर चली जाती हूँ, आप घर छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं, आप संन्यास ग्रहण क्यों करना चाहते हैं, आप भगवान के भजन कीर्तन में व्यस्त रहना चाहते हैं, आप यहाँ पर रह के भगवान के नाम कीर्तन में व्यस्त रहिए, आप अपने सब भक्तजनों को छोड़कर अपने प्रियजनों को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं, मैं ही अपने पिता के घर चली जाती हूँ, अगर आप नदिया के सब लोगों को छोड़कर चले गए, सब भक्तों को छोड़कर चले गए तो उनको बहुत कष्ट होगा, सब भक्तजन आपकी अलकावली, आपके जो सुंदर घुंघराले काले बाल हैं, जो आपकी पिताम्बर येलो गारमेंट जो आप पहनते हैं, जब आप नृत्य करते हैं तो सबके हृदय को इतनी शांति होती है, अगर सब लोग आपको संन्यास की वेशभूषा में देखेंगे, जब देखेंगे कि आपने अपना सिर मुंडन कर लिया है, आपने सन्यासी के वस्त्र ग्रहण किए हैं, तो सबके दिलों को, सबके हृदय को चोट पहुंचेगी। आप कृपया करके संन्यास ग्रहण मत कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो संन्यास ग्रहण किए बिना पूरा नहीं होगा। अगर पिता, अगर परिवार में पिता असमय मृत्यु हो जाए या पिता चला जाए, तो माता जो है वो अपने बच्चों का किसी तरह से दुख में भी भरण पोषण लालन पालन कर सकती है। पर अगर माता का देहांत हो जाए, अगर माता छोड़कर चली जाए, तो पिता के लिए घर को संभालना, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। तो परिवार बिखर जाता है। तो हमने जो नदिया में कीर्तन की फुलवारी बनाई है, मेरे जाने के बाद तुम उस फुलवारी का ध्यान रखना, तुम उस फुलवारी को मुरझाने मत देना, तुम सब भक्तों के साथ मिलकर नदिया में नाम कीर्तन करना। तो विष्णु प्रिया जब ऐसे भगवान के साथ वार्तालाप कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, भगवान को बोल रही हैं, गौरंगा महाप्रभु को बोल रही है कि मैं अपने जीवन का निर्वाह कैसे करूंगी, आप मेरे नाथ, आप मेरे स्वामी हैं, आपके जाने के बाद मैं अपने जीवन का निर्वाह कैसे करूंगी, तो गौरंगा महाप्रभु ने विष्णु प्रिया को उपदेश दिया कि तुम सुबह उठना, गंगा जी में स्नान करना, फिर घर पे आके तुलसी की पूजा अर्चना करना, गोपाल जी की अर्चना करना, उसके बाद एक बर्तन में चावल के दाने रखना, एक जगह पर बैठकर एक एक चावल का दाना लेकर, एक चावल का दाना बर्तन से उठाना, उसके ऊपर बोलना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक एक चावल के दाने पर भगवान का महामंत्र जपते हुए उस चावल के दाने को अलग रखना, फिर दूसरा दाना चावल का उठाना, उसके ऊपर भगवान का महामंत्र जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके एक एक चावल के दाने पर भगवान का नाम लेकर उसे अलग रखना, इस तरह से 3 प्रहर तक तुम भगवान के नाम का जप करना, और 3 प्रहर में जितने चावल के दाने शुद्ध हो जाएंगे, तुम फिर उसकी रसोई बनाना, उस चावल को पकाना, उसका भगवान को भोग लगाना, सब भक्तजनों को अपने घर पे बुलाना, उनको प्रसाद खिलाना और खुद प्रसाद ग्रहण करना, उसके बाद सच्ची माता के आंगन में सब भक्तों के साथ मिलकर तुम कीर्तन करना। तो भगवान ने विष्णु प्रिया को ऐसा उपदेश दिया कि इस तरह से तुम अपना जीवन व्यतीत करना। पर विष्णु प्रिया ने बोला कि मैं इतनी सौभाग्यवती थी, सब नदियां मुझे इतना सौभाग्यशाली समझता था, इतना बड़भागी समझता था, पर अगर मुझे अभागा बनाकर पूरे संसार के भाग्य के उदय होता है, तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, मैं आपके रस्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। अगर आप संन्यास लेकर जाना चाहते हैं तो आप ऐसा ही कीजिए, मैं आपके रस्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय गौरांगा निमाई तो 1 वर्ष पहले ही अपने संन्यास लेने की भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। तो ये सब लीला होने के 1 साल के बाद भगवान ने एक्चुअल संन्यास ग्रहण किया, और संन्यास लेने से 1 दिन पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु को, जो उनके पार्षद थे, उनको बुलाकर कहा कि आज ये मेरा आखिरी दिन है नदिया में, कल मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो जैसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ये बताया कि कल मैं संन्यास लेने वाला हूँ, तो उनके हृदय में इतना कष्ट हुआ कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को उठाया, उन्होंने बोला कि आज मेरा यहाँ पर आखिरी कीर्तन है नदिया में, सब भक्तजनों को बुलाओ श्रीवास आंगन में, सबको इकट्ठा करो, आज मैं यहाँ पर अपना आखिरी कीर्तन करूंगा, सबसे मिलूंगा। तो श्रीवास आंगन में सब भक्तजन आए, किसी को ये नहीं बताया गया था कि महाप्रभु का, गौरंगा का आज यहाँ पर नदिया में आखिरी दिन है। सब भक्तजनों को बुलाया गया कीर्तन के लिए, सब लोग कीर्तन में आए, और गौरंगा महाप्रभु कीर्तन में सब लोगों को बड़े प्रेम से मिल रहे थे, सबको आलिंगन कर रहे थे, सबको अपने गले से लगाकर अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे, प्रेम व्यक्त कर रहे थे, और सब लोग हैरान हो रहे थे कि आज गौरंगा सबके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, सबके साथ इतना प्रेम क्यों प्रकट कर रहे हैं। तो उस समय नदिया में भगवान का एक और भक्त था, बहुत ही गरीब भक्त था, जो सब्जी बेचने का काम करता था, श्रीधर कोला वेचा। तो उस कीर्तन में श्रीधर कोला वेचा दिन के समय में वहां पर नहीं आ सका, तो गौरंग महाप्रभु श्रीधर कोला वेचा से नहीं मिल पाए। और श्रीधर कोला वेचा जब शाम को श्रीवास आंगन में आया, तब तक चैतन्य महाप्रभु, तब तक गौरंग महाप्रभु और सब भक्तजन वहां से जा चुके थे। और श्रीधर कोला वेचा उस शाम को निमाय पंडित के घर पे, सची माता के घर पे आया गौरंग महाप्रभु से मिलने के लिए। और भेंट में देने के लिए वो एक लौकी दूधी भगवान को भेंट करने के लिए लेके आया। तो भगवान श्रीधर कोला वेचा से भी प्रेम से मिले, उसकी भेंट को स्वीकार किया। और महाप्रभु सोच रहे थे कि आज रात मेरी यहाँ पर अंतिम रात है, मेरा अंतिम दिन है आज यहाँ, और श्रीधर कोला वेचा ने इतने प्रेम से ये भेंट दिया है, तो इसको मैं प्रसाद को ले नहीं पाऊंगा। तो उसी रात को गौरंग महाप्रभु ने सची माता को बोला कि इस दूधी की खीर बनाओ। तो सची माता ने गौरंग महाप्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए उसी समय दूधी का खीर बनाया। और भगवान को भोग लगा के जैसे ही सबने दूधी का खीर खाया, इतना उसका अद्भुत स्वाद, इतना नेक्टेरियन टेस्ट था, सची माता बोली थी इसमें इतना मिठास है इस खीर में, जो श्रीधर कोला वेचा अपने घर से दूधी दे के गए हैं, जो दूध दे के गए हैं उसके अंदर इतना मिठास है। तो गौरंग महाप्रभु ने बोला ये दीन भक्त का दिया हुआ भेंट है जिसमें उनका प्रेम मिलित है, इसलिए इसके अंदर इतना मिठास है। तो महाप्रभु ने उसी रात उस भेंट को स्वीकार किया कि ये मेरी अंतिम रात है। उस रात जब सची माता विश्राम करने गई अपने कक्ष में, जब वो सो रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु ने सोचा कि आज मैं अपनी माता की अंतिम सेवा कर लूं। तो उन्होंने सची माता के चरण दबाए, और चरण दबा के उसके बाद जब वो अपने कक्ष में आए, जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, तो विष्णु प्रिया अपने बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तो महाप्रभु ने जैसे ही विष्णु प्रिया को रोते हुए देखा, रुदन करते देखा, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो विष्णु प्रिया ने बोला कि मैं आज सुबह जब गंगा जी पर स्नान करने गई तो मेरे पाँव में ठोकर लगी और मेरे जो पैर का अंगूठा है वहां पर चोट लगी, उस पे इतना रक्त बह रहा था। तो महाप्रभु ने बोला तो क्या ये थोड़ी सी चोट लगने की वजह से, उसके दर्द की वजह से तुम रो रही हो? तो विष्णु प्रिया ने बोला नहीं नहीं मैं अपने पैर में चोट लगने की वजह से नहीं रो रही हूँ, एक्चुअली जब मैं उसके बाद गंगा जी में स्नान कर रही थी, जब मैं गंगा जी में डुबकी लगा रही थी, तो जो मेरे नाक की नथ है और मेरे कान के जो कुंडल है गंगा जी के जल में प्रवाहित हो गए। तो गौरंग महाप्रभु ने बोला तो क्या ये तुम्हारे रुदन का कारण है कि तुम्हारे गहने गंगा जी के जल में प्रवाहित हो गए इसलिए तुम रो रही हो? हमारा जो असली गहना है भगवान का नाम कीर्तन है, ये गहने तो और भी आ जाएंगे, इसमें रुदन करने का क्या बात है? विष्णु प्रिया जी ने बोला नहीं नहीं मैं अपने जो कंगन, अपने जो जेवर हैं उनके बह जाने की वजह से रुदन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद गंगा जी में स्नान लेने के बाद जब मैं बाहर आई, तो वृक्ष की शाखा पर एक कौवा बैठा बहुत जोर से करुण रुंदन कर रहा था। तो महाप्रभु ने बोला जेवर का पानी में बह जाना, पैर में चोट लग जाना, किसी पक्षी का करुण रुदन करना, ये तो सब साधारण बातें हैं, इसमें रोने वाली क्या बात है? उसने बोला नहीं, मेरे दाया शरीर का जो दाया अंग है वो भी फड़क रहे हैं, शुभ लक्षण नहीं है, मुझे अपशगुन प्रतीत हो रहे हैं सुबह से, आप कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझे कहीं अचानक छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? तो महाप्रभु ने विष्णु प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। महाप्रभु ने बोला अभी रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। और ऐसे ही जब विष्णु प्रिया का हाथ पकड़कर उसको सांत्वना देते देते जब सुला रहे थे, और विष्णु प्रिया सोने में नहीं आ रही थी, और गौरंगा महाप्रभु सोच रहे हैं अगर ये सोएंगे नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे, मुझे आज रात को ही यहां से जाना है गंगा पार करके संन्यास लेने के लिए, अगर ये सोएंगे नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने योग माया का जो योग माया को बुलाया कि आप विष्णु प्रिया को सुलाइए। तो योग माया ने आके विष्णु प्रिया को सुला दिया। तो जब गौरंग महाप्रभु विष्णु प्रिया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका अंग वस्त्र है, जो पीताम्बर है, वो विष्णु प्रिया के हाथ में उनकी कलाई पे लिपटा हुआ है, तो तो वो नींद से दोबारा उठ ना जाए, तो गौरांगा महाप्रभु ने अपना अंग वस्त्र जो पीताम्बर है वो वहीं पर छोड़ दिया, और उसी समय अपने घर से निकल गए नदिया को छोड़कर जाने के लिए। और उसके बाद विष्णुप्रिया माता जी पूरी जिंदगी भगवान का सिर्फ जो एक अंग वस्त्र था, जो पीताम्बर था, वो भगवान की उनके पास अंतिम निशानी थी, जिसके सहारे, जिसकी पूजा करके उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया गौरंगा महाप्रभु की उपदेश का पालन करते हुए। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु, गौरंगा महाप्रभु भाग के, घर से भाग के गए, गंगा जी के तट पर आए, उन्होंने बोला मैं रात के मध्य रात्रि में ही गंगा जी को पार करके दूसरी तरफ चला जाऊंगा, अगर सुबह हो जाएगी तो नदिया के सब लोग, अगर उनको पता चल जाएगा मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से, तो कोई मुझे जाने नहीं देगा, कोई मुझे संन्यास लेने नहीं देगा। तो उसी समय रात को ही गंगा जी में कोई नौका नहीं थी, तो गंगा जी में ऐसे ही छलांग लगा दी गंगा जी को पार जाने के लिए। और उस समय सर्दी का समय था, सर्दी का महीना था, मकर संक्रांति का दिन, जब चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जी को पार करके मकर संक्रांति के दिन संन्यास ग्रहण किया, तो रात को ठंड के समय में गंगा जी के पानी में छलांग लगाकर नदी में तैरते हुए नदी को पार करके वो दूसरी तरफ काटुआ में आए। काटुआ को कुछ लोग कटवा बोलते हैं, कुछ काटुआ बोलते हैं, तो काटुआ में चले गए गंगा जी को पार करके। और गंगा के जिस घाट से गौरंगा महाप्रभु ने छलांग लगाई गंगा में, गंगा पार करके दूसरी तरफ जाने के लिए, आज भी वो घाट वहां पर है नदिया में, मायापुर में। और उस घाट का नाम लोगों ने रखा है निष्ठुर घाट, निर्दयी घाट, कि जिस घाट पे पार करके महाप्रभु नदिया को छोड़ के संन्यास लेने के लिए चले गए, वो बहुत ही निष्ठुर घाट है। तो महाप्रभु सुबह सुबह के समय में कटवा में आए। कटवा में उस समय एक सन्यासी रहते थे, केशव भारती, जिसको महाप्रभु अपना सन्यास गुरु बनाना चाहते थे। तो महाप्रभु जब ही कटवा में आए सुबह सुबह के समय, सब लोग जब जब गलियों में निकल रहे थे, उन्होंने देखा ये तो नदिया के गौरांग लग रहे हैं, गौरांग महाप्रभु, जो कीर्तन, जो भगवान का नाम जप करते हैं, सब लोगों के साथ नृत्य करते हैं, भगवान का नाम प्रचार करते हैं, इनके वस्त्र भीगे हुए, ये कटवा में इस समय सुबह सुबह क्या करने आए हैं। तो जैसे ही महाप्रभु केशव भारती की कुटिया के सामने आए, पूरा कटवा का लोगों का जो भीड़ था वो भी सब इकट्ठा हो गया, उन्होंने केशव भारती जी की कुटिया में जाकर बोला कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ आपसे। जैसे ही केशव भारती ने सुना कि महाप्रभु बोल रहे हैं मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम संन्यास क्यों लेना चाहते हो, अभी तुम्हारी क्या उम्र है संन्यास लेने की, अभी तो तुम्हारा यौवन है, अभी तो तुम्हारे 25 वर्ष की आयु भी व्यतीत नहीं हुई है। 25, शास्त्रों का सिद्धांत है कि 25 वर्ष की आयु तक तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है, 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ धर्म का पालन होता है, उसके बाद अगर कोई चाहे तो वानप्रस्थ ग्रहण कर सकता है या सीधा संन्यास भी ले सकता है, तुम्हारा तो अभी यौवन है, तुम संन्यास क्यों लेना चाहते हो। महाप्रभु ने कहा मेरा जो जीवन का उद्देश्य है संन्यास लिए बिना पूरा नहीं हो सकता, आप मुझे कृपया संन्यास दीजिए। तो जब उन्होंने केशव भारती से बहुत ही अनुनय विनय किया संन्यास देने के लिए, तो केशव भारती जी संन्यास देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बोला संन्यास देने के लिए बहुत अरेंजमेंट, बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ता है, पहले तो सिर का मुंडन करना पड़ता है, फिर संन्यास, फिर स्नान करना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, उसके बाद यज्ञ होता है, फिर दीक्षा मंत्र दिया जाता है, तो ये सब करने के लिए ये सब तैयारियां करनी पड़ेगी। उसी समय वहां पर भीड़ में एक नाई भी था, उसका नाम था मधुशील नाई। मधुशील नाई जैसे ही भीड़ के सामने आया तो उसको निर्देश दिया गया कि तुम्हें चैतन्य महाप्रभु को, तुम्हें गौरंगा महाप्रभु का सिर का मुंडन करना है। जैसे ही उसने चैतन्य महाप्रभु की ओर देखा, उसने देखा अरे ये तो नदिया के निमाई हैं, गौरंगा महाप्रभु हैं, इनका इतना सुंदर स्वरूप है, सब भक्तजन इनके इतने सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, इनके साथ नृत्य कीर्तन करते हैं, मैं इनके सिर का मुंडन कैसे कर सकता हूँ, नहीं, मुझसे इनके सिर का मुंडन नहीं किया जाएगा, मैं अपने औजार इनके सर पे इनके बालों के साथ स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। तो जब मधुशील नाई ने ऐसा बोला तो गौरंगा महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठाया, और बोलने लगे, हरे कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा। जैसे ही मधुशील नायक का हाथ पकड़कर गौरांगा महाप्रभु ने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो उनके हृदय में भी भगवान का प्रेम उभर आया। तो मधुशील नायक भगवान के पैरों में गिर गए, गौरांगा महाप्रभु के पैरों में गिर गए। नहीं नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, आप मुझसे ये मत करवाइए। तो भगवान ने जब उनको बोला नहीं तुम्हें ये काम करना ही होगा, तो मधुशील नायक ने अपने उस तरह से भगवान के सिर का मुंडन किया, जैसे जैसे एक एक बाल नीचे गिर रहा है, मधुशील नाई बेहोश हो के नीचे गिर रहा है, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उन्होंने भगवान के सिर का मुंडन करने के बाद बोला कि अभी मैं ये व्यवसाय करना ही नहीं चाहता हूँ, आगे से मैं किसी के सर का मुंडन नहीं करूंगा, मैं अपना ये व्यवसाय ही छोड़ दूंगा। भगवान का मुंडन करने के बाद मधुशील नाई ने अपने व्यवसाय का त्याग कर दिया। तो लोगों ने बोला तुम अपनी जीविका अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? उसने बोला मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, पर अभी किसी के सर का मुंडन नहीं करूंगा, अभी किसी के सर को हाथ नहीं लगाऊंगा, अभी मेरे हाथ सिर्फ भगवान के भक्तों के चरण का स्पर्श करने के लिए है, अभी मैं किसी और का सर को स्पर्श नहीं करूंगा। तो भगवान का मुंडन किया गया, उनको अभिषेक कराया गया, स्नान कराया गया, यज्ञ हुआ। यज्ञ देने के बाद जब मंत्र दीक्षा दी जानी थी तो भगवान ने भारती केशव भारती को बोला कि मुझे स्वप्न में एक निर्देश हुआ है, मुझे एक मंत्र ध्यान में आया है, मैं आपके कान में वो मंत्र बताना चाहता हूँ कि क्या यही मंत्र है जो संन्यास ग्रहण करने के लिए उचित है। तो भगवान ने पहले केशव भारती को वो मंत्र उनके कान में दिया, जैसे दीक्षा की जाती है तो कान में मंत्र दिया जाता है, तो महाप्रभु पहले केशव भारती के गुरु बने एक तरह से, उनको कान में मंत्र दिया। और उन्होंने जो मंत्र बोला, जर्नली संन्यास जब लिया जाता है तो मंत्र दिया जाता है तत्त्वमसि, जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनको मंत्र मिलता है त्वम असि, तुम जो हो वो वही हो, मतलब तुम जो हो वो भगवान का ही स्वरूप हो, तत्त्वम असि। और चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती के कान में जो मंत्र दिया उन्होंने बोला तस्य त्वम असि, तस्य त्वम असि का मतलब मैं उसका हूँ, मैं वही नहीं हूँ मैं उसका हूँ। तो केशव भारती ने बोला हाँ जी यही यही मंत्र है संन्यास देने के लिए। तो केशव भारती ने पहले वही मंत्र भगवान से सुना और फिर वही मंत्र दीक्षा के लिए उन्होंने भगवान को दिया। क्योंकि गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, उनका गुरु कौन हो सकता है, वे पूरे जगत के गुरु हैं, पर अपनी भगवान अपनी लीला में गुरु को भी धारण करते हैं। तो उन्होंने केशव भारती को अपना संन्यास गुरु स्वीकार किया, उन्होंने अपने पहले दीक्षा ली थी ईश्वरपुरी से और संन्यास के लिए उन्होंने केशव भारती को चुना, पर पहले उन्होंने केशव भारती को भी संन्यास दीक्षा दिया आप उनके कान में मंत्र उच्चारण करके, और फिर वही मंत्र केशव भारती ने उनके कान में उच्चारण किया। और जब इस समय भगवान की दीक्षा पूरी हुई तो दीक्षा के बाद सन्यासी को यह नाम भी दिया जाता है। तो केशव भारती सोच रहे थे कि उनको नाम क्या दिया जाए, इनका क्या नाम दिया जाए। ऐसे जब वो सोच ही रहे थे तो उसी समय पर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, श्री कृष्ण चैतन्य। तो ऐसे जब आकाश से वाणी आई, आकाशवाणी हुई कि ये भगवान का इनका नाम दिया है संन्यास का, तो केशव भारती ने बोला हाँ यही नाम उचित है, श्री कृष्ण चैतन्य। इसका मतलब क्या है, कृष्ण ही चैतन्य है, जो कृष्ण है वो ही चैतन्य रूप में आए हैं, वो ही गौरंग महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य नाम में तीन अक्षर हैं, श्री कृष्ण और चैतन्य, इसका मतलब क्या है, श्री युक्त कृष्ण सचैतन्य, राधा रानी सहित कृष्ण वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य उनको संन्यास दीक्षा के समय पे नाम दिया गया श्री कृष्ण चैतन्य। तो महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया, जब पूरे नदिया में ये बात चली कि गौरंग महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया है, तो सबके हृदय भाव विभोर हो गए भगवान के सेपरेशन में, उनके सेपरेशन में सबको लग रहा था कि अभी गौरंग महाप्रभु से हमारा भेंट कम होगा, वो संन्यास ग्रहण करके सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। तो उनसे हमारा भेंट कब होगा? तो भगवान की उसके संन्यास ग्रहण करने के बाद जो लीला हुई, भगवान ने पूरे भारत का भ्रमण किया, अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग भक्तों को जो उपदेश दिया, सबको नाम कीर्तन में जोड़ा, और जगन्नाथपुरी में रह के जो भगवान ने अलग अलग लीलाएं की, उन लीलाओं को पढ़ के जो भक्ति भाव पैदा होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में अपनी राइटिंग्स में सिर्फ 8 उपदेश लिखे, शिक्षा अष्टकम, जिसको हम शिक्षा अष्टकम जानते हैं, भगवान के द्वारा लिखे गए 8 उपदेश, जिसमें उन्होंने भगवान के नाम की महिमा का व्याख्यान किया कि किस परिस्थितियों में भगवान का सदा नाम स्मरण किया जा सकता है। भगवान की जो लीला है वो अलौकिक लीला है, इस संसार की लीला नहीं है, इस संसार के परे की लीला है, और जो इस भगवान की लीला को सुनता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम में वापस जाता है। अलौकिक लीला करे श्री कृष्ण चैतन्य, यही यह सुने तानर जन्म देहि धन्य, उसका जन्म लेना सफल हो जाता है जो भगवान की लीला को सुनता है, भगवान की लीला को स्मरण करता है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम बुधा, चिंतायाम चिंतायाम भक्ता चैतन्य चरितामृतम। श्रूयताम श्रूयताम नित्य, भगवान की लीला को नित्य रूप से सुनो, गीयताम गीयताम बुधा, भगवान की लीला का नित्य गान करो, चिंतयम चिंतयम भक्त्या, भगवान के जो भक्त हैं भगवान की लीला का नित्य स्मरण करें, भगवान की जो लीला चैतन्य चरित अमृता, भगवान की जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण किया जाए, श्रवण किया जाए, गान किया जाए, इससे हमारे जन्म का सफलता प्राप्त हो सकती है, इससे हमारा जन्म धन्य हो सकता है। और जो भगवान शिक्षाष्टकम, भगवान का जो प्रथम उपदेश है शिक्षाष्टकम में, उसमें भगवान बता रहे हैं भगवान के नाम का कीर्तन की महिमा, भगवान का जो नाम कीर्तन है उससे हमारे हृदय के ऊपर जो मैल जमा हुआ है वो मैल भगवान का नाम कीर्तन करने से उतर जाएगा, जो हमारा इस संसारिक जगत में जो दावाग्नि है भगवान का नाम कीर्तन करने से वो दावानल अग्नि बुझ जाएगी, जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर है उस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का भजन करो, स्मरण करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, जो उनके जीवन का उद्देश्य था, जो भगवान की अवतार ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य था कि मैं अपना अवतार ग्रहण करके अपने भक्त के रूप में आऊंगा और भक्त के रूप में आकर भक्ति का प्रचार करूंगा, क्योंकि अपने माध्यम से ही, अपने आचरण के माध्यम से ही दूसरों को सिखाया जा सकता है। अगर हम सिर्फ प्रचार करते रहें कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, पर जब तक हमारे आचरण में वो ना हो तो दूसरों को कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा। जब भगवान की भक्ति का हम आचरण करेंगे तब दूसरों में भी भगवान की भक्ति का समावेश होगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त के रूप में आए, उसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो साधारण संत थे, कोई साधारण भक्त थे, भगवान खुद राधा कृष्ण सम्मिलित अवतार है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु अपीयरेंस डे की जय। आई होप वी कैन अब्सॉर्ब अवर सेल्फ इन द पास टाइम्स इन द लीला ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड मेक दिस ओकेजन ऑफ गौर पूर्णिमा अ मेमोरेबल ओकेजन फॉर अस टू प्रोग्रेस इन भक्ति। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और कमेंट,
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज. वेरी नाइस वंडरफुल पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु नरेटेड बाय यू कृष्ण प्रभु जी. आई हैड टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी पास्ट टाइम व्हेन रिगार्डिंग विष्णु प्रिया माता जी. नाउ प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. व्हाट आई हैड हर्ड वाज दी व्हेन शी यूज्ड टू चैंट the one complete round of japa, then she used to set aside one grain of rice, and then how many japas that she would do, that many grains of rice she would take out, and that she would cook, offer to Lord and have it. That was for every grain of maha mantra. So that was one of my questions, and then there was one more question. So
first your question is, what I have heard is with each maha mantra she will put aside one grain of rice, not as with one full round.
Okay,
I can double check and confirm that and get back to you, but what I have heard, jo maine suna hai uske hisab se har dane par ek maha mantra जपते हैं और उनको साइड में रखते हैं. जैसे हम एक बीड के ऊपर एक मंत्र जप करते हैं और फिर नेक्स्ट बीड के ऊपर मूव होते हैं. सो शी इज चैंटिंग ऑन ईच ग्रेन ऑफ राइस एंड देन शी विल व्हाटएवर राइस ग्रेन्स आर कलेक्टेड इन दैट वे आफ्टर चैंटिंग फॉर 6 आवर्स.
अच्छा,
देन शी विल कुक दैट मच राइस.
ओके,
सो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी ग्रेन्स इट कैन बी.
या,
एंड देन शी इज फीडिंग, इनवाइटिंग ऑल द डिवोटीज to participate in that prasadam.
Okay, Pramji. Yeah, that was one question. One more question which I had was, wasn't Chaitanya Mahaprabhu on the day he was leaving or one day before he was leaving, he gave Vishnupriya Mataji on something like a Govardhan Shila to worship that, because she was not, how would she be away from him? So Chaitanya Mahaprabhu said ki shila unko di ki isko aap worship karo. So and then that's how she used to chant and worship. So I'm confused now, Prabhuji, so please guide.
Yeah, so they had the Govardhan Shila, and there was a Gopal deity also, which Chaitanya Mahaprabhu instructed her to worship the Gopal deity, offer the bhoga, do the tulsi puja, tulsi vandana. And that's how she will continue on with her life.
Okay, sir. All right, thank you.
Hare Krishna, Prabhuji.
Hare Krishna, Mataji.
I heard that while Chaitanya Mahaprabhu was leaving, Mata asked him to give her his sandals, like his padraksha. And she used to worship those, right? Is it true?
I'm not sure, Mataji. I guess that was maybe in the later part when Chaitanya Mahaprabhu visits later.
Okay.
After sannyas, while he is planning to go to Vrindavan, so he comes to Shantipur.
I
believe it is at that occasion when he gives his sandals.
Yeah, okay, thank you, Prabhuji.
Hare Krishna, anybody has any question, comment? Okay, otherwise we'll end the call now. Thank you very much. Mancha kalpatru vyasya kripa sindhu bhyaya vichar patanam pa vaishnave bhyo namo nam.
Thank you, Prabhuji, for the very wonderful class. Thank you,
Prabhuji.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you.